الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو ان آیات جن کی بھی تلاوت کی گئی، ان کا ترجمہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد ہم رب آیات پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 15 پر سے معرف القرآن جلد نمبر 3 میں. تو سورہ مائدہ کی آیات ہیں، تو فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں، یعنی یہ جو تھی، یہ جو آج پڑھی ہے پوری کی پوری صرف دوسری آیت، ایک ہی آیت ہے، ماشاءاللہ لمبی لمبی آیتوں والی سورت ہے. تو پہلی آیت میں معاہدات کے یعنی وعدوں کے پورا کرنے کی تاکید تھی. ان معاہدات میں سے ایک معاہدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حلال و حرام کی پابندی کی جائے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا پہلی آیت کی تفسیر میں کہ معاہدات کی پھر بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل اللہ اور بندے کے درمیان معاہدہ، ٹھیک ہے، رب ربوبیت والا معاہدہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات والا معاہدہ، پھر اس کے بعد انسانوں کے آپس میں جو معاہدات ہوتے ہیں جیسے بیع و شراء اور نکاح و طلاق والے جو معاہدات ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو قوموں اور تنظیموں کے درمیان معاہدات ہوتے ہیں، بزنسز کے درمیان اور ملکوں کے درمیان معاہدات ہوتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے معاہدات اس میں شامل ہیں. تو اب یہاں پر کون سے والے معاہدے کی بات ہو رہی ہے؟ ایک منٹ جی. جی وعلیکم السلام. یہاں پر کون سے معاہدات کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حلال و حرام کی پابندی کی جائے؟ اس دوسری آیت میں اس معاہدے کی دو اہم دفعات کا بیان ہے. یعنی جب آپ کوئی معاہدہ کسی کے ساتھ کرتے ہیں نا، تو اب اس کے اندر دفعات ہوتی ہیں. دفعات سے مراد کیا؟ اس کے اندر جو شقیں ہوتی ہیں یا اس کے اندر جو جو پوائنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو دفعات بھی کہا جاتا ہے. کیا اس کے لیے پراپر لیگل ٹرم کیا؟ آرٹیکلز. آرٹیکلز ٹھیک ہے، آرٹیکلز بھی شاید کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انڈیویجول پوائنٹس وغیرہ جو بھی اس کے اندر ہوتے ہیں وہ مراد ہے. تو ایک شاعر اللہ کی تعظیم اور ان کی بے حرمتی سے بچنے کی ہدایت. یہ حنانہ سینٹر کا نام ویسے مناسب نہیں ہے، آپ اپنا ذاتی بھی تو کوئی نام ہوگا نا. ہاں یہ زیادہ مناسب ہے، ٹھیک ہے. ایک شاعر اللہ کی تعظیم اور ان کی بے حرمتی سے بچنے کی ہدایت. دوسرے، اپنے اور غیر، دوست اور دشمن سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ اور ظلم کا بدلہ ظلم سے لینے کی ممانعت. ٹھیک ہے، شاعر اللہ کی تعظیم. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. قرآن مجید ہی دوسری جگہ پہ بتاتا ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے نا، تو وہ اپنے دل کے اندر موجود تقوی کی وجہ سے تعظیم کرتا ہے. تو تقوی کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا بتائی؟ کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنا. کیا مطلب؟ کہ جن کی حرمت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، جن کی عزت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، تو ان کی عزت کرنا، ٹھیک ہے نا، اور جن کی عزت اللہ نے نہیں رکھی ہے بلکہ ان کو ذلیل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ان کی عزت یہ اس میں نہیں آئے گا. جیسے کہ سور کا جو جانور ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے عزت نہیں رکھی ہے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ اب اس کو جو ہے وہ یعنی मार देना बिल्कुल, इसलिए कि मारने का तो कहीं हमारे ट्रेडिशन में नहीं है कि सुअरों को सबको खत्म कर दो दुनिया से, लेकिन ये कि हम उसको इज्जत तो नहीं धोना, जैसे कि आजकल जो है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं, बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं और दीनदार मुसलमान, दुनियादारों की बात नहीं कर रहा, दीनदार, कि जिन्होंने इस PIG वाले जानवर को, सुअर जानवर को जो है वो कहा कि भाई बस गोश्त खाना हराम है, बाकी तो कोई मसला नहीं है इसके साथ, तो अब वो उसकी तस्वीरें लगाते हैं, नहीं बच्चों के स्कूलों में लगाएंगे, पीडियाट्रिक क्लिनिक्स के अंदर तस्वीरें लगाएंगे, कार्टून्स जो वेस्टर्न ट्रेडिशन के अंदर, तो ये बहुत ही इज्जत वाली चीज है, तो उसको जो है वो वेस्टर्न कार्टून्स की जो तस्वीरें होती हैं वो फिर अपने घरों के अंदर और अपने जो है वो कारोबारों के अंदर लगाएंगे, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये उस चीज को इज्जत दे रहे हैं जिसकी अल्लाह ताला ने एक्चुअली इज्जत नहीं रखी है, उसको इज्जत दे रहे हैं, तो भाई ये तो उल्टा ही हो गया ना पूरा का पूरा मामला, इज्जत जिनको देनी थी उनको तो आपने देनी, और जिनको नहीं देनी थी उनको इतना जगह दे दी अपने हर जगह में। बहरहाल तो पहला ये कि शायरुल्लाह की तासीर और उनकी बेहरमती से बचना, और दूसरा सुभान अल्लाह क्या ये हमारा दीन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन में वैसे तो दूसरे अध्यान में भी इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है, लेकिन बस वही बात है कि दूसरे अध्यान में कोई उन पे अमल नहीं करता, हमारे यहाँ तो सब अमल करते हैं, इस वजह से हमारा दीन ज्यादा अच्छा है, तो भाई हम भी अगर अमल नहीं करेंगे ना इन बातों के ऊपर कि दोस्त दुश्मन के साथ जो है वो अदल इंसाफ का मामला नहीं रखेंगे, तो फिर हमारे पास क्या बाकी रह गया ना दूसरों से कहने के लिए कि तुम जो है वो तो अमल नहीं करते, हम तो बड़ा अमल करते हैं, हम कौन सा अमल करते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह की जो ह्यूमन वर्च्यूज वाली बातें हैं ये तो दूसरे अध्ययन में भी मिल जाएंगी, जब भी तो आजकल एब्राहमिक अकॉर्ड और यूनिवर्सल रिलीजन और जो है वो प्लूरलिज्म, ये सब यही बातें तो करते हैं कि भाई ये कौन सी इस्लाम की कौन सी खास बात है, ये तो हर हर दीन के अंदर है, ये तो हर जो है वो सोशल ऑर्डर के अंदर होता है इस तरह की बातें, तो भाई अमल करके दिखाएंगे तब जो है वो हम उनसे कह सकते हैं ना कि हाँ भाई ये जो है ना नबी अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है ना ये सिर्फ जो है वो इन बातों को किताबों में छुपा करके नहीं रखती है बल्कि इन बातों पर अमल भी करती है, ठीक है, और तुम जो है ना तुम्हारी किताबों में छुपी हुई बातें हैं तुम उनके ऊपर बिल्कुल अमल नहीं करते हो, तब फर्क नजर आएगा ना भाई, ठीक है। बहरहाल तो ये अदल इंसाफ का मामला और जुल्म का बदला जुल्म से लेने से ममानियत। इस आयत के नुजूल का सबब चंद वाकयात हैं, यानी असबब नुजूल जिसको कहते हैं आयत का, या शान नुजूल आयत का कहते हैं कि भाई किस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो या प्रीटेक्स्ट के अंदर जो है वो आयत नाजिल हुई थी, तो वो चंद वाकयात हैं यानी एक से ज्यादा वाकयात, तो पहले उनको सुन लीजिए ताकि आयत का मजमून पूरी तरह से दिल नशीन हो सके, आपके दिल में उतर सके, दिल में घर कर सके। एक वाकया हुदैबिया का जिसकी तफसील कुरान मजीद ने दूसरी जगह बयान फरमाई है, वो ये है कि हिजरत के 6 साल में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने इरादा किया कि उम्रा करें, नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था और उस ख्वाब की बुनियाद पर नबी, क्योंकि नबियों का जो ख्वाब होता है वो वही होता है, हमारी तरह के ख्वाबों का मामला नहीं होता ना, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,000 से ज्यादा यानी 1,000 से ज्यादा सहाबा के साथ एहराम उम्रा बांध कर बकसद मक्का मुअज्जमा रवाना हुए, इस इरादे के साथ मक्का मुकज्जमा मक्का मुअज्जमा के इरादे से रवाना हुए, यानी उम्रे के इरादे से मक्का मुअज्जमा की तरफ रवाना हुए, मक्के के करीब मकाम हुदैबिया में पहुंचकर मक्का मुकरमा वालों को इत्तला दी कि हम किसी जंग या जंगी मकसद के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, हमें इसकी इजाजत दो, तो मुशरिकीन मक्का ने इजाजत नहीं दी और बड़ी सख्त और कड़ी शर्तों के साथ ये मुआहिदा किया कि उस इस वक्त सब अपने अपने एहराम खोल दें और वापस चले जाएं, ठीक है, ये हुदैबिया की बहुत लंबी तफसील है, अल्हम्दुलिल्लाह सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास के अंदर बहुत तफसील के साथ हमने इसको पढ़ा भी है और डिस्कस किया है, बच्चों की क्लास थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे बड़े भी ऑनलाइन और ऑन साइट में शामिल थे, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो उसकी तफसील में भी जाए बगैर हम यहीं से बस को आगे चला रहे हैं, मतलब हजरत ने बहुत ही 5th गियर के अंदर जो है ना वो फास्ट फॉरवर्ड मारा है कि इजाजत नहीं दी उन्होंने, और फिर जो है वो बिल्कुल वो जहाँ पे मुआहिदा साइन होने वाली बात आ गई थी वहां पे पहुंच गए हैं, ये बड़ी सख्त शराइत के साथ मुआहिदा किया मुसलमानों के साथ कि अपने आराम खोल दें और वापस चले जाएं, आइंदा साल उमरे के लिए इस तरह आए कि हथियार साथ ना हो, सिर्फ 3 रोज ठहरे मक्का मुकरमा के अंदर, सिर्फ 3 रोज ठहरे और उम्रा करके वापस चले जाएं। और भी बहुत सी ऐसी शराइत थी जिनका तस्लीम कर लेना बज़ाहिर मुसलमानों के वक़ार व इज्जत के मुनाफी था। ठीक है, याद ही होगा आपको कि वो जो सहाबा कराम बिल्कुल गोया के सुन होकर के रह गए थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने किन शराइत के ऊपर जो मुआहदा कर लिया है, और उमर फारूक रज़ी अल्लाह जैसे यानी आशिक सादिक और गैरतमंद मुसलमान, और वो वहां पे क्या उनके साथ हुआ था। ठीक है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सब मुतमईन होकर वापस हो गए। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो गया, सब जो है मुतमईन हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सारे वापस चले गए। फिर 7 हिजरी में दोबारा माहे ज़ीक़ादा में इन्हीं शराइत की पाबंदी के साथ ये उम्रा कजा किया गया। बहरहाल वाक़े हुदैबिया और उन तौहीन आमेज शराइत ने सहाबा कराम के कुलूब में मुशरिकीन मक्का की तरफ से इंतहाई नफरत व बुग़्ज़ का बीज बो दिया था। ठीक है, तो यानी असर जो है ना वो था, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में शकूक व शुभात का बीज नहीं बोया इन वाकयात ने। ठीक है ना, ये सहाबा कराम की खसूसियात में से खसूसियत है कि कुछ भी हो जाए नबी अलैहिस्सलाम के बारे में शकूक व शुभात में मुब्तला नहीं होते थे, लेकिन दुश्मनों के बारे में बुग़्ज़ में मुब्तला होना ये तो वैसे भी ईमान की निशानी है, शिर्क और कुफर और काफरी के खिलाफ दिल में नफरत होना, अशिद्दाउ अलल कुफारी व रुहमाउ बैनहुम। ठीक है, तो उनकी तरफ से जो है नफरत और बुग़्ज़ का बीज जो है वो इनके दिलों में आ गया था। दूसरा वाकया ये पेश आया कि मुशरिकीन मक्का में से हतीम बिन हिंद अपना माल तिजारत लेकर मदीना तैयबा आया। ठीक है, और माल फरोख्त करने के बाद अपना सामान और आदमी मदीना मुनव्वरा से बाहर छोड़कर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मुनाफिकाना तौर पर अपना इरादा इस्लाम लाने का जाहिर किया। ठीक है, ताकि मुसलमान उससे मुतमईन हो जाएं। ठीक है, अब मक्की जिंदगी के अंदर तो किसी ने जो है ना वो मुनाफिकत की कोशिश नहीं करी। ठीक है, क्योंकि मक्की जिंदगी में इस्लाम जो है वो स्टैब्लिश नहीं हुआ था, कोई पर्क्स और प्रिविलेजेस जो है वो इस्लाम के साथ एफिलिएटेड नहीं थे, तो जो मुसलमान होता था वो पिटता ही था या रुसवा होता था अपने खानदान वालों के हाथों। ठीक है ना, तो अब वहां पर मुनाफिक बनने की जरूरत ही कोई नहीं थी, वहां पर तो जो दुश्मन था वो खुल करके दुश्मन था और जो मुसलमान था वो खुल करके मुसलमान था कि हाँ भाई मैं मुसलमान हूँ। ठीक है, लेकिन जब मदीना तैयबा नबी अलैहिस्सलाम आ गए तो आते के साथ ही एक रियासत स्टैब्लिश हो गई, बेशक छोटी सी थी और उसके अंदर बहुत सारी जो है वो कमजोरियां थी कि भाई साथ जो है वो दुश्मन यहूदी भी रह रहे हैं और बहुत ही मुख्तसर सी एक रियासत थी और चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे, लेकिन बहरहाल रियासत की डेफिनेशन क्या होती है कि एक अमीर हो और उसके नीचे जो है ना वो उसके ताबे हो मानने वाले, ये होती है रियासत की डेफिनेशन। ठीक है, उमूर सल्तनत के अंदर भी और इनफरादी उमूर के अंदर भी मानने वाले लोग हों, तो दैट्स व्हाट कंप्राइज रियासत। अब उसके साइज से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जब रियासत कायम हो गई तो उसके बाद फिर जो है ना वो जो लोग दिल से तैयार नहीं थे इसके लिए, तो उन्होंने जो अंदर ही मौजूद थे उन्होंने कहा भी हम घर छोड़ करके तो नहीं जा सकते। ठीक है, हम क्यों जाएं ये बाहर से आने वालों की वजह से, तो अब अंदर रहना जो है ना वो दुश्मनी की शक्ल में रहना वो भी बड़ा मुश्किल काम है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये बहरूपिया यानी बहरूप इख्तियार कर लिया कि ऊपर से मुसलमान हो गए और अंदर से वो काफिर ही रहे। ठीक है, ताकि जो है ना वो फायदे हासिल कर सकें और मुश्किलात से बच सकें। अब ये शख्स हालांकि मक्का मुकरमा से आ रहा है, लेकिन अब जो है ना ये मदनी दौर शुरू हो चुका है, बेशक ये मक्का मुकरमा का बंदा है, ये मदीना तैयबा का रहने वाला नहीं था, लेकिन दौर से फर्क पड़ता है। ठीक है ना, जैसे कि मक्की सूरतें और मदनी सूरतें, जगह से फर्क नहीं पड़ता कि वो सूरत किधर नाजिल हुई थी, बल्कि दौर से फर्क पड़ता है कि वो किस दौर में नाजिल हुई थी। ठीक है, तो उसी तरीके से अब मदनी दौर शुरू हो चुका है और इस दौर के अंदर इवन काफिर भी जो है वो मदीना तैयबा में आकर के अगर बेनिफिट्स हासिल करना चाहता है तो उसको भी मुनाफिक बनना पड़ा, ठीक है ना। तो दौर इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें कुछ किसी और दौर के अंदर उनकी रेलिवेंस नहीं होती है, लेकिन जब दौर मुख्तलिफ हो जाता है और दौर के साथ साथ हालात जाहिर है मुख्तलिफ हो जाते हैं, तो फिर वही चीज रेलिवेंट बन जाती है, और जो चीज पहले रेलिवेंट थी वो इररेलीवेंट बन जाती है, ठीक है। वक्त जो है ना बड़ी अहम चीज है। अच्छा, तो ये जो है ना, इसने मुनाफिकाना तौर पर अपना इस्लाम लाने का इजहार कर दिया ताकि मुसलमान इससे मुतमईन हो जाएं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके आने से पहले ही बजरिए वही खबर पाकर सहाबा इकराम को बतला दिया था कि हमारे पास एक शख्स आने वाला है जो शैतान की जुबान से कलाम करेगा, शैतान की जुबान से कलाम करेगा यानी गालियां देगा हमारे पास आकर के। है जैसे कि हमारे यहाँ वो, मैंने अजीब किसी ने वीडियो दिखाई कि बायकॉट करवा रहे हैं KFC में घुस करके, ठीक है, इस्लामाबाद में शायद कोई KFC था, तो वहां पे घुस घुस करके जो है ना वो बायकॉट करवा रहे हैं, लेकिन गलीज गालियां दे दे करके लोगों को वहां से निकाल रहे हैं, है, डंडे भी चला रहे हैं और गलीज गलीज गालियां जो है वो भी मुंह से निकाले चले जा रहे हैं, और जो है वो क्या कर रहे हैं भाई, फलस्तीनियों के हक में जो है बायकॉट करवा रहे हैं, ठीक है। बहरहाल, तो शैतान की जुबान जो है ये भी शैतानी की जुबान होती है कि गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा है, गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसने नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर गालियां तो नहीं देनी थी, इसने क्या करना था, इसने तो मुनाफिकत की जुबान इस्तेमाल करनी थी, राइट, जी हुजूरी की जुबान इस्तेमाल करनी थी, आगे से जो है वो चापलूसी की जुबान इस्तेमाल करनी थी, अंदर नफरत और बोझ रखा हुआ था इसने, तो इसको कह रहे हैं शैतान की जुबान, राइट, इसी को कह रहे हैं ना शैतान की जुबान, वरना उसने और क्या करना था आकर के, गालियां देनी थी, राइट, या कोई फोहश कलाम करना था नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर के, इंडिसेंट जो है वो वल्गर किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी थी, नहीं, इसने तो बहुत तमीज से बात करनी थी नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर के। लेकिन अगर जुबान से झूठ हो और अंदर जो है ना वो दिल में दूसरा मामला हो, ये भी शैतान की जुबान है, ये भी शैतान की ही जुबान है, ठीक है। अल्लाह ताला हमें बात की समझ और अपने गलतियों से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ठीक है। तो शैतान की जुबान से वो कलाम करेगा, और जब ये वापस गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स कुफर के साथ आया और धोखा व गद्दारी के साथ लौटा है, ये शख्स आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से निकलकर सीधा मदीना मुनव्वरा से बाहर पहुंचा, जहां अहले मदीना के जानवर चल रहे थे उनको हका कर साथ ले गया, ठीक है। ये चरागाहें जो हैं ये शहर के अंदर नहीं होती थी, ये बाहर होती थी, और भी वाकया चरागाहों से मुतालिक हैं, तो ले गया अपने साथ। सहाबा कराम को इसकी इत्तला कुछ देर में हुई, तअक्कुब के लिए निकले तो वो उनकी जद से बाहर जा चुका था। फिर जब हिजरत के 7वें साल आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ उमरे हुदैबिया की कजा के लिए जा रहे थे तो दूर से तलबिया की आवाज सुनी, तलबिया क्या होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हमद वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, कितने अच्छे कलिमात हैं, कितने अजीम कलिमात हैं, राइट। तो ये जो अजीम तरीन कलिमात थे ये कुफार भी पढ़ते थे, ठीक है ना, और इनकी मुराद जो है ना वो कोई डीमन या कोई जिन नहीं होता था जिसको वो अल्लाह उम्मा कह रहे होते थे, वो उसी अल्लाह को ही पुकार रहे होते थे जिसको कि हम और आप पुकारते हैं, ठीक है। तो दीनदार थे ये कुफार, सारे के सारे दीनदार थे और दीन की बहुत सारी बातों पर अमल करने वाले भी थे, ये कोई वो नहीं थे कि बस नाइट क्लब में जाने वाले और जो है वो सिर्फ क्रिकेट का मैच खेलने वाले, नहीं, क्रिकेट के साथ नमाज पढ़ने वाले भी थे ये, ठीक है। मैं उन लोगों को नहीं कह रहा जो क्रिकेट के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हम बात वही कर रहे हैं जो हमारा हाल है कि हमने सब कुछ ही करना होता है, नाफरमानी के काम भी करने होते हैं और दीन के काम भी करने होते हैं, तो ये भी ऐसी ही कौम थी, ये भी ऐसी ही कौम थी, ठीक है। तो तलबिया पढ़ता हुआ जा रहा था तो जब सहाबा ने सुना तो और देखा कि वो तो यही हतीम बिन हिंद था जिसने अहले मदीना के उन जानवरों को जो मदीना मुनव्वरा से लाया था बतौर कुर्बानी के लिए वो अपने साथ लिए हुए उम्रा अदा करने के लिए जा रहा था, ठीक है, उम्रा करने के लिए जा रहा था अल्लाह के घर का, सही है। तो उस वक्त सहाबे कराम का कसद हुआ कि उस पर हमला करके अपने जानवर छीन लें और उसको यहीं खत्म कर दें। ठीक है, तो ये है वो वाकया, वो एक वाकया बिसाइड्स द अदर वाकयात के जो के इन आयात की शान नुज़ूल बना। ठीक है, तीसरा वाकया ये हुआ कि तो ठीक है, दूसरा वाकया भी हो गया, फिर उसके बाद ठीक है, दो दो वाकया तो ऊपर पढ़ लिया ना। अब तीसरा वाकया ये हुआ कि हिजरत के 8वें साल रमजान मुबारक में मक्का मुकरमा फतह हुआ और तकरीबन पूरे अरब पर इस्लामी कब्जा हो गया और मुशरिकीन ने मक्का को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी इंतकाम के आजाद फरमा दिया। वो आजादी के साथ अपने सब काम करते रहे, यहां तक कि अपने जाहिलाना तर्ज पर हज व उमरे की रसूम भी अदा करते रहे। ठीक है ना, क्योंकि सीरत में हमने पढ़ा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को जो है वो 4 महीने की मोहलत दी थी कि ये शिर्क की हालत में अगर यहां पर रह रहे हैं तो रह सकते हैं। ठीक है, तो ये उसी हालत में उमरे भी करते थे, हज भी करते थे, क्योंकि फतेह मक्का कब हुई थी? रमजान मुबारक में। रमजान मुबारक के बाद जो है वो अभी जैसे शवाल का महीना चल रहा है, फिर ज़िकादा का महीना, फिर उसके बाद ज़िलहज्जा का महीना, तो 4 महीने के अंदर ही अंदर हज का सीजन भी आ गया। ठीक है, तो अब ये मुशरिकाना तरीके से जो है वो हज भी अदा कर रहे थे। तो इस वक्त बाज़ सहाबा कराम के दिलों में वाकया हुदैबिया का इंतकाम लेने का ख्याल आया कि उन्होंने हमें जायज और हक तरीके पर उमरा करने से रोक दिया था, हम उनके नाजायज और गलत तरीके के उमरा और हज को क्यों आजाद छोड़ दें? ठीक है, तो उन पर हमला करें, उनके जानवर छीन लें और उनको खत्म कर दें। जैसे आज भी ऐसा होता है, बहुत से जोशीले मुसलमान होते हैं, नौजवान होते हैं, और उनको गुस्सा आता है, दुश्मनों पर ही गुस्सा आता है। अभी हम अपनों के गुस्से की बात नहीं कर रहे, अपनों को गुस्सा आने वाली बात, हम दुश्मनों के गुस्से के ऊपर गुस्सा आने वाली, तो नौजवानों के दिल में गुस्सा आता है और वो दिल चाहता है कि बस हम उनको मार दें या खुद जाके फट जाएं। ठीक है ना, अब वो जमाना भी गुजर गया जब खुद जाके फट जाते थे, अब तो वो रिमोट कंट्रोल में फाड़ रहे होते हैं इंसानों को भी, मैंने ये सुना है। ठीक है, कि वो जो जाके फटते हैं ना, तो वो एक्चुअली रिमोट कंट्रोल्ड होते हैं, वो गुस्से में आके नहीं फट रहे होते हैं जाकर के मुसलमानों को मारने के लिए, बल्कि वो रिमोट कंट्रोल्ड होते हैं। लेकिन जिस जमाने में गुस्से में जाके के फटते थे, तो वो गुस्सा ही होता था ना कि ये मुर्तद हो गए हैं, ये इनका कत्ल वाजिब हो गया है, इस वजह से हम बम बम जा करके इनके दरमियान फाड़ देंगे, खुद भी मर जाएंगे और उनको भी मार देंगे। तो इसको विजिलेंटिज्म भी कहते हैं, अंग्रेजी में भी इसको कहते हैं विजिलेंटिज्म। ठीक है, तो पहले भी होता था, आज भी होता है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये आज कहना चाह रहा था सर। ठीक है, तो लेकिन जब विजिलेंटिज्म जो है वो फील होता है कि भी हमारे जो जज्बाती नौजवान हैं, नौजवान और जो है जोश व खरोश वाले मुसलमान हैं, तो उस वक्त जो है ना फिर उनकी पकड़ करनी होती है, उनको मना करना होता है, उनको बताना होता है कि नो, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है ना, आपको इसकी इजाजत नहीं है, और अगर आप ये काम करेंगे तो ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, तो आप भी गुनाह में मुब्तला हो जाएंगे। फिर तो यही हुआ कि इनके इस्लाह के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयात नाजिल फरमाई, और आयात इनके ऊपर डायरेक्टली नाजिल नहीं फरमाई कि अब उन नौजवानों के ऊपर ऊपर से वही नाजिल होनी शुरू हो गई, नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ही नाजिल फरमाई और नबी अलैहिस्सलाम ने ही उनको ये आयात सुनाई और उनको रोका। ठीक है, तो ये थ्रू प्रॉपर चैनल ही काम होता है। ठीक है, ये वाकयात इब्ने जरीर ने बरवायत अक्रमा व सुदई नकल किए हैं। ये चंद वाकयात थे कि जिनकी बिना पर आयत नाजिल हुई, जिसमें मुसलमानों को ये हिदायत दी गई कि शाएरुल्लाह की ताजीम तुम्हारा फर्ज है, किसी दुश्मन के बोगज व अदावत की वजह से इसमें खलल डालने की कतान इजाजत नहीं है। ठीक है, यानी मोमिनीन ए वो लोगों जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को रसूल माना है, उनका इकरार किया है रिसालत का, उनसे बात हो रही है कि अब आप भी जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि अब आपकी मर्जी जो चाहे करें, बस काफिरों को जो है ना उनको सारी पाबंदियां हैं उनके ऊपर, नहीं, आपके ऊपर भी पाबंदियां। तो अशहर हुरम में यानी जो हुरमत वाले 4 महीने हैं उनमें कत्लो कताल भी जायज नहीं है, उस वक्त जायज नहीं था, बाद में ये वो हो गया यानी नस हो गई, ये वाला हुक्म मनसूख हो गया ये हुक्म, ठीक है, लेकिन उस वक्त तो मनसूख नहीं हुआ था ना। तो अशुरे हराम में कत्ल व कताल भी जायज नहीं है, कुर्बानी के जानवरों को हरम तक जाने से रोकना या उनका छीन लेना भी जायज नहीं है, और जो मुशरिकीन अहराम बांधकर अपने ख्याल के मुताबिक अल्लाह ताला के फजल व रजा हासिल करने के कसद से चले हैं, अगरचे बवजह कुफर उनका ये ख्याल खाम है, खाम ख्याली है उनकी कि उनको अल्लाह का फजल मिल जाएगा, नहीं फजल वजल कोई नहीं मिलना उनको, लेकिन अपने गुमान में वो फजल के ख्याल से चले हैं। भाई नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ताला ने जब उनको मोहलत दिलवाई है, ठीक है ना, उनके साथ जो है वो ये मामला रखा है, तो अब आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले, ठीक है ना, ये तो अल्लाह उसके रसूल का मामला है, या अमीर अमीर मुमलिकत का मामला है कि उसने जब उसको छूट दी है, अब आप कौन से अपनी तरफ से जो है वो मारपीट शुरू कर सकते हैं, आपको बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है, ठीक है, वो बेशक गलत काम कर रहे हैं, जैसे आज KFC को गुस्से में जला रहे हैं, आप फिर वही हनाना सेंटर साहब आ गए, अपना नाम लिखा करें जी, KFC को जो गुस्से में जला रहे हैं या गलीज गालियों के साथ KFC से लोगों को निकाल रहे हैं, इसकी किधर से इजाजत आ गई है, ठीक है, बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं है। भाई बायकॉट करने का उलमा है ना, वरासतुल अंबिया, उन्होंने बायकॉट करने को कहा है, तो भाई अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो सबको कहता हूँ ये जो गजा का मसला शुरू हुआ है 2.5 साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्बा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो इससे पहले भी जो है वो इन लोगों को इस्तेमाल नहीं करते थे, ठीक है ना, भाई क्यों करें इस्तेमाल, क्यों जाएं KFC के अंदर बिला वजह का। हाँ जब अमेरिका में अगर कभी जाना पड़ गया है तो अमेरिका में तो मिलेगा ही, वो भी खैर हलाल नहीं है तो उस वजह से हम उधर नहीं जाते, लेकिन बाकी जो है वो भी तो अमरीकी है ना, क्योंकि अमरीका के अंदर मौजूद है, उधर क्या करोगे जाकर के खाने का, लेकिन पाकिस्तान में रह के क्यों खा रहे हो, राइट, या सऊदी अरब में रह के क्यों खा रहे हो, ठीक है भाई, जिस चीज का अल्टरनेटिव है, पहली तो वो जो वीडियोस आएंगी और वीडियोस के अंदर आपको जो है वो रुलाया जाएगा तब आप छोड़ेंगे, वरना आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, ये तो हमारी अपनी बेवकूफी या बेगैरती है हमारी, ठीक है, लेकिन जब छोड़ेंगे तो अब गुस्से में जलाएंगे भी, यही मसला है, जो कि पहले नहीं छोड़ते थे तो अब जो है ना वो गुस्से में जला भी रहे हैं और गलीज गालियां भी दे रहे हैं, ठीक है, इस्लाम ना पहले था और इस्लाम ना अभी है, बस अपनी मनमर्जी चल रही है, अपनी नफ्स परस्ती चल रही है बस सारी की सारी, ठीक है, अल्लाह का दीन अल्लाह के बताए गए तरीके से ही फैलाया जाएगा, ना कि इंसान की अपनी मर्जी से, एब्सोल्युटली, ठीक है, तो फरमाते हैं कि जी ये उनका खाम ख्याल बेशक है, लेकिन शायरुल्लाह की हिफाजत और एहतराम का तकाजा ये है कि उनसे कोई मजाहमत ना की जाए, नीज वो लोग जिन्होंने तुम्हें उम्रा करने से रोक दिया था उनके बुग़्ज़ व अदावत का इंतकाम इस तरह लेना जायज नहीं है कि मुसलमान उनको मक्का मुकरमा में दाखिल होने या शाएर हज अदा करने से रोक दें, क्योंकि ये उनकी उनके जुल्म के बदले में हमारी तरफ से जुल्म हो जाएगा जो इस्लाम में रवा नहीं है, ठीक है, तो सहाबा कराम तो वैसे जुल्म तो नहीं करते थे, लेकिन जब उनके दिल में कुफार के बोगस की वजह से कोई ऐसी बात आई भी तो अल्लाह ताला ने उनकी रोक टोक फरमा दी, नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से उन तक कन्वे कर दिया ये मैसेज, और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की बात मान ली, किस्सा खलास, ठीक है, हमारा मामला क्या है कि हमने मामले से पहले भी जुल्म करना था और जब ऊपर से हमें पैगाम पहुंचाया गया कि भाई ये नहीं है जायज, हमने उसको भी नहीं मानना, ठीक है ना, उसके बाद भी जुल्म करना है, तो वो लोग जो पहले से जुल्म कर रहे थे ना उनका मामला यही होता है कि फिर वो पैगाम पहुंच जाने के बाद भी जुल्म ही कर रहे होते हैं, सहाबा कराम का ये मामला नहीं था, वो पहले भी जुल्म नहीं कर रहे थे और जब उनके दिल में कोई ऐसी कैफियत आई भी कि वो जरा उनको मजा चखाएं, आगे से हुक्म आ गया, खलास खत्म हो गया मामला, ठीक है, तभी अल्लाह की मदद भी आती थी, और हमारे साथ तभी अल्लाह की मदद कोई नहीं आ रही चाहे कुछ भी करें, ठीक है, इसी को महफूज रहना भी कहते हैं, जज़ाकुमुल्लाह, सहाबा कराम क्या है, महफूज है, बल्कि औलिया कराम महफूज है, और सहाबा कराम सबसे बड़े औलिया कराम थे तो वो महफूज थे, महफूज होने का मतलब यही है कि बात मान लेते थे और जो उनके दिल में तकाजे पैदा हो भी रहे होते थे तो उनको भी दबा देते थे, इसी को महफूज होना कहते हैं, ठीक है, अच्छा खुलासे तफसीर शुरू कर लेते हैं, कितना वक्त रह गया है, हाँ थोड़ा सा टाइम है, तो उसमें फरमाते हैं कि ए ईमान वालों बेहुर्मती ना करो, खुदा ताला के दीन की निशानियों की, यानी जिन चीजों के अदब की हिफाजत के वास्ते खुदा ताला ने कुछ अहकाम मुकर्रर किए हैं, उन अहकाम के खिलाफ करके उनकी बेअदबी ना करो। मसलन हरम और अहराम का यह अदब मुकर्रर किया है कि इसमें शिकार ना करो, तो शिकार करना बेअदबी और हराम होगा। ठीक है, भाई अल्लाह की मर्जी, शिकार करना कहीं पे जायज है, कहीं पे मना कर दिया तो मना कर दिया, तो कर दिया। और उसकी इल्लत ये बयान करी कि भाई ये इल्लत यानी वजह ये बयान करी कि भाई ये बेअदबी है हरम के अंदर जो है ना, वो आप फोकस रहें। जब भी हम कुछ कुछ लोगों को समझाते हैं, खुसूसन बच्चों को, कि भाई हरम में जा करके जब आप वहां पे आए ना उमरे के लिए, अब जो आपको चीजों को देख करके जो मचलने शुरू हो जाते हैं ना सारे के सारे, फिर वहां पर ठीक है ना, ये मुनासिब नहीं। लेकिन मानने वाले फिर कम ही होते हैं, उनके अंदर अल्लाह हिदायत अता फरमा दे तो आगे के नुकसान से बच जाएंगे। ठीक है, तो हरम में वो चीजें जो कि बाहर जायज थी ना, और बाहर जो है वो आपको इनकरेज भी किया जा रहा था, हरम में अब ये ना करें जा करके, हरम की बाउंड्रीज के अंदर, तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो शिकार जो है ना ये कोई हराम चीज नहीं है, लेकिन हरम में फिर फोकस किधर है, अल्लाह का घर या नबी अलैहिस्सलाम का रोजा मुबारक। ठीक है, जब भी ये जो शॉपिंग की भी जो है ना, कुछ खवातीन को बहुत ज्यादा जो लगी होती है, यानी बेयर मिनिमम ही की हद तक रखें। ठीक है, कि बस कोई चीज है जो कि और कहीं नहीं मिल रही थी, वहां पे ले ली, खुसूसन खजूरें हैं या खुसूसन जो है वो तो वहाँ की कुछ जाने माजे हैं या इस तरह की चीजें हैं। लेकिन अब यह है कि वह फालतू है, जाहिर इबादत वादत तो कोई खास करनी नहीं है वहां पे जाकर के, तो चलो शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। ठीक है ना, और उसकी हुज्जतें बनाती हैं, हाँ इतना भी सख्ती नहीं है और ऐसा भी नहीं होता है और टू मच हो जाते हैं और ये हो जाते हैं। भाई आपको अल्लाह, आपने आपको अल्लाह ताला ने अकल अता फरमाई, आप इस्तेमाल नहीं करती तो अब मैं क्या करूँ इसका। ठीक है ना, अकल इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला ने हरम को उसकी हुरमत बनाई है, उसकी इज्जत बनाई है। ठीक है, तो अब बिला वजह के जो जाकर के शॉपिंग भी ना करें, जिस तरह से कुछ बच्चे जो हैं बिला वजह के जाकर के फिर वो काम करते हैं जिसको मैं नहीं कहना चाहता। ठीक है ना, नहीं कहना सही, तो तमीज से रहें वहां पर जाकर। अच्छा, बाकी ये कि ना हरम में कुर्बानी होने वाले जानवर की बेअदबी करो कि उसमें तआरुस करने लगो, और ना उन जानवरों की बेअदबी करो जिनके गले में इस निशानी के लिए पट्टे पड़े हुए हों, कि ये अल्लाह की के नियाज हैं, अल्लाह की नियाज हैं, हरम में ज़बह होंगी जाकर। ठीक है, तो जानवरों की भी जो है ना वो यानी इज्जत करो जो कि इस मकसद के लिए रिजर्व हो चुके हैं, कि ये अल्लाह की नियाज है, हरम में ज़बह होंगे। और ना उन लोगों की बेहुर्मती करो जो कि बैतुल हराम यानी बैतुल्लाह के कसद से जा रही हो, और अपने रब के फजल और रजामंदी के तालिब, यानी उन चीजों के अदब से काफिरों के साथ भी तआरुज मत करो। ठीक है, मुसलमान तो मुसलमान, काफिर के साथ भी तआरुज मत करो। और ऊपर की आयत में जो अहराम के अदब से शिकार को हराम फरमाया गया है, वो अहराम ही तक है, वरना जिस वक्त तुम अहराम से बाहर आ जाओ तो इजाजत है कि शिकार किया करो, बशर्ते कि वो शिकार हरम में ना। ठीक है, यानी हरम के अंदर जो है ना वो अहराम की हालत से निकलने के बाद भी शिकार जायज नहीं है। भाई दुनिया में एक ही तो अल्लाह का हरम है, उसको भी नहीं छोड़ना। ठीक है, बाकी दुनिया में किसने कहा है कि भाई वहां पे जाकर के आप शिकार ना करें, वहां पे जाकर के आप वो वाला काम ना करें जो मैं नहीं कहना चाहता। ठीक है, वो भी जायज है, एक अल्लाह ताला का हरम है मक्का मुकरमा के अंदर, वहां भी जाकर के जो है ना वो बस बेचैन जो लोग होते हैं ना, जो रूह बेचैन होती है, टिकने वाली नहीं होती है, बस वो हर जगह ही बेचैन रहती है, ये मसला रूह के साथ है। तो भाई रूह को जो है वो चैन दिलाना, यही तो इस जिंदगी का मकसद है हमारा, जिसको बंदगी कहते हैं, रूह को चैन दिलाना। ठीक है ना, यही मकसद है जिंदगी का, और अगर चैन नहीं दिलाए ना तो फिर अगले जहान में भी बेचैनी रहेंगे, वो बेचैनी किधर होगी फिर, वो फिर उस जगह नहीं होगी जिसको जन्नत कहते हैं, वो बेचैनी जो होगी ना वो फिर जहन्नम के अंदर होगी। दुनिया में बेचैन रहेंगे यानी चैन से अपने आप को फारिग करके रहेंगे, तो फिर अगली जहान में भी फिर बेचैनी रहेंगे, यानी जन्नत नहीं मिलेगी फिर जहान में। ठीक है, तो यही बेचैन हासिल कर लें। तो एक हरम मक्का मुकरमा है, एक हरम जो है मदीना मुनव्वरा है, बस बाकी बहुत बड़ी दुनिया तो पड़ी हुई है शौक पूरा करने के लिए। अच्छा, तो ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम से जो इस सबब से बुग़्ज़ है कि उन्होंने तुमको साले हुदैबिया में मस्जिद हराम में जाने से रोक दिया था, मुराद कुफारे कुरैश, वो बुग़्ज़ तुम्हारे लिए इसका बायस हो जाए कि तुम शरा की हद से निकल जाओ, यानी अहकाम मस्कूरा के खिलाफ कर बैठो, ऐसा ना कर। ठीक है, तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से अहकाम है ना, और जाहिर है अल्लाह का हुक्म तोड़ने से फिर अल्लाह की नाराजगी मिलती है, और जब छोटे का हुक्म तोड़ने से फिर छोटे की नाराजगी मिलती है, जिसका हुक्म तोड़ोगे उसकी नाराजगी मिलेगी। ठीक है, तो फरमाते हैं कि वो तुम्हारे लिए इसका बायस हो जाए कि तुम शरा की हद से निकल जाओ, यानी अहकाम मस्कूरा के खिलाफ कर बैठो, ऐसा ना करो, और नेकी और तकवा की बातों में एक दूसरे की इआनत करते रहो। मसलन ये अहकाम हैं कि इनमें दूसरों को भी अमल करने की तरगीब दो, और गुनाह और ज्यादती की बातों में एक दूसरे की इआनत मत करो। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे की इआनत जो करते हैं ना गुनाह के अंदर, ये तो फिर शैतान की सिफत है ना। ठीक है, कि वो लाजम पे इक्तफा नहीं करता, लाजम कहते हैं कि अब बस अपने अपने अंदर। ठीक है, और मुतअद्दी कहते हैं कि जब आप जो है ना किसी दूसरे के ऊपर असर डालना शुरू हो जाए, दूसरे पे असर डालना शुरू हो जाए, ठीक है ना, तो ये जो दूसरे के ऊपर अपनी बुराई का असर डालना है ना, तो ये तो शैतान का काम है। ठीक है, तो अगर जो है वो दूसरों के तुम तआवुन करना शुरू हो जाओगे बुराई के अंदर, इस्म के अंदर, उद्वान के अंदर, फिर ये तो फिर उसके रास्ते पे चल पड़े ना। अच्छी अच्छी जो है वो दाढ़ियां रखी हुई हैं और टोपियां पहनी हुई हैं और पता नहीं और कौन कौन से नहीं ये काम कर रहे हैं, लेकिन शैतान के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, फिर तो फायदा नहीं होगा ना। तो इसमें दूसरों को भी अमल करने की तरगीब दो, और गुनाह और ज्यादती की बातों में एक दूसरे की इहानत मत करो। मसलन यही अहकाम है, अगर कोई इनके खिलाफ करने लगे तो तुम इसकी इहानत मत करो। इहानत में वो भी चीज आती है कि जो अथॉरिटीज हैं या जो डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले हैं, जैसे अब्बू, जैसे अम्मी, ठीक है, घर के अंदर अब्बू अम्मी होते हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले, और उनके पास अथॉरिटी होती है, तो छुपा रहे हैं, उनसे बात को छुपा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये भी तो इयानत ही है ना गुनाह के अंदर। उसी तरीके से थोड़ा सा उसको आप मजीद वाइडन कर लें, तो अगर कोई निज़ाम बना हुआ है दीनी हो या दुनियावी निज़ाम हो, तो आप उस निज़ाम के अंदर रखना डालने वाले हैं, मुनाफिकत करने वाले, और जो है वो उखाड़ पिछाड़ करने वाले, तो उनकी गलतियों के ऊपर पर्दा डाल रहे हैं, और जो ऊपर वाले हैं उनको नहीं बता रहे हैं कि भाई ये हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी इआनत है, बुराई के अंदर इआनत है, निज़ाम को खराब करने के ना, ये बुराई है, और इसमें इआनत मत करो अल्लाह के बंदे। ठीक है, सबसे छुप जाओगे, अल्लाह से नहीं छुपोगे। अच्छा, अल्लाह ताला से डरो, यहाँ पे ये नहीं फरमाया रसूलुल्लाह से डरो, ये फरमाया रसूलुल्लाह से डरो। ठीक, रसूलुल्लाह को से डरने का क्या मतलब भाई? रसूल अल्लाह ताला तो सब जानते हैं ना, रसूलुल्लाह के पास तो इल्मुल गैब नहीं है, आलिमुल गैब तो नबी अलैहिस्सलाम के नहीं है। ठीक है, तो उनको तो पता भी नहीं चलेगा, अगर अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे उनको वही के जरिए से मुतला करना, तो नबी अलैहिस्सलाम को तो नहीं पता चलेगा, जैसे कि बेशुमार वाकयात हैं जिनमें नबी अलैहिस्सलाम को नहीं पता चला। तो पता तो अल्लाह को चलना है ना, और अल्लाह ने जो है वो हिसाब भी करना है, अल्लाह ने जो है किताब भी करना है, उससे डरो भाई। और वो अल्लाह जो है ना वो आज भी मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम आज मौजूद नहीं है, राइट? अहले सुन्ना वल जमात का क्या है, हाजिर नाजिर नहीं है नबी अलैहिस्सलाम, तो नबी अलैहिस्सलाम तो दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन कौन मौजूद है? अल्लाह, वही अल्लाह मौजूद है 1400 साल पहले था, नया अल्लाह नहीं आया है, क्या ख्याल है? नया अल्लाह आ गया कोई? नाउज बिल्ला, जिसकी सिफात जो है वो अब वैसी ना रही जैसे कि 1400 साल पहले कुरान के नाजुल होने के वक्त जिसकी सिफात जैसी सिफात थी, अब कोई कम कम इंटेंसिटी वाला अल्लाह आ गया है, नाउज बिल्ला, सुभान नाउज बिल्ला। बात समझाने के लिए कह रहे हैं भाई, वही अल्लाह है, उसी अल्लाह से उन लोगों को भी डरने का हुक्म दिया जाता था, और उसी अल्लाह से आज भी हमें डरने का, भाई कोई चेंज नहीं आया इसके अंदर, इंसान सारे बदल गए, चेहरे सारे बदल गए, लेकिन अल्लाह का निज़ाम ना अल्लाह बदला ना अल्लाह का निज़ाम बदला। ठीक है, और बस वही ना उसूल बदला कि जो इस निज़ाम के तहत चलेगा वही कामयाब होगा दुनिया और आखिरत के अंदर, और जो नहीं चलेगा उसको दाढ़ियां टोपियां नहीं कामयाब करने देंगी, होने देंगी, और उसने जितनी भी जो कुछ भी कर ले ऊपर से, राइट, वो उसको कामयाब नहीं होने देंगे। सिर्फ ये तकवा है जिसकी बुनियाद पर कोई कामयाब होगा, बोले सर आपके ऊपर से तो गुजर नहीं सकेगा कम अज कम, राइट? और क्या चाहिए? तो अल्लाह से डरो, इससे सब अहकाम की पाबंदी सहल हो जाती। बिलाशुबा अल्लाह ताला अहकाम की मुखालफत करने वाले को सख्त सजा देने वाले, ठीक है ना। ये दो आयतें अभी तक हमने पढ़ी हैं सूरह मायदा की, और ये दोनों आयतें जो हैं या अय्युहल लजीना आमनू के लिए, ठीक है ना, या अय्युहल लजीना कफरू के लिए नहीं है, या अय्युहल लजीना नाफकू के लिए नहीं है, ठीक है ना, या ये या अय्युहल इंसान के लिए भी नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो कि मुसलमान हैं, ईमान लाने वाले हैं, नबी अलैहिस्सलाम का इकरार करने वाले हैं, उनको ये बताया जा रहा है इन्नल्लाह शदीदुल अकाब, ठीक है। तो जो हमारा गुमान है कि नहीं ये तो सब काफिरों के लिए और हम चूंकि काफिर नहीं है इस वजह से हम इन सबसे एग्जेम्प्टेड, नहीं भाई कहाँ से एग्जेम्प्टेड हो गए, ठीक है ना, तो ईमान की हालत में हम एग्जेम्प्टेड हैं और ना हम इस पॉसिबिलिटी से एग्जेम्प्टेड हैं कि अल्लाह ताला हमें ईमान से महरूम कर देगा और फिर उसके बाद सारी की सारी काफिरों वाली सजाएं भी हमारे ऊपर अप्लीकेबल हो जाएंगी। दोनों पॉसिबिलिटी से हम एग्जेम्प्टेड नहीं है। तो खुलासे तफसीर आज की क्लास में मुकम्मल हो गई और टाइम भी जो है वो 1 मिनट रह गया। किसी को कोई सवाल करना हो या कोई कमेंट हो तो वो हम ले सकते हैं अभी, बाहर के मसाइल अगली क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक भाई, इंसानों को अल्लाह ताला ने मुतय्यन जरूर किया है दुनिया के अंदर निजाम चलवाने के लिए, चलाने के लिए नहीं चलवाने के लिए, चलाता अल्लाह ही ताला है, ठीक है। लेकिन इंसान यानी इंसान की इतनी जरूरत जरूर है कि भाई निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है वो इंसान के साथ मुकम्मल होता है और ये है वो है, तो वो सब ठीक है। लेकिन इंसान जो है ना, चाहे जो भी हो, जितना ही अच्छा हो, जितना ही बड़ा हो, जितना ही बासलाहियत हो, जितना ही बाअकल हो, वो दायमी नहीं रह सकता, उसने गुजर जाना है इस दुनिया से, और अल्लाह ताला फिर उसके बाद दूसरे इंसान को ले आते हैं, ठीक है ना। यानी निज़ाम बगैर इंसान के अल्लाह ताला चलाते नहीं है, इंसान के साथ ही चलाते हैं, लेकिन इंसान आते जाते रहते हैं, उनकी कोई अहमियत इतनी नहीं होती कि बस वो हमेशा के लिए उनकी अहमियत हो जाए, लेकिन असल अहमियत जिसकी है वो नहीं चेंज होता, वो नहीं अदलता बदलता रहता, वो तो एक ही है अल्लाह, वो तो एक ही है, ठीक है। तो हर एक को उसके मकाम पे रखे ना, अल्लाह को अल्लाह के मकाम पे क्यों नहीं रखते, अल्लाह को पता नहीं उठा करके जो है वो किसी ऐरे गैरे नथु गैरे के मकाम पे रख दिया है, और इंसानों को खाम खा में उठा करके जो है वो अल्लाह के मकाम पे पहुंचा दिया है, राइट। तो क्या क्या ऐसे तो नहीं कुछ बात बनेगी, क्या फरमा रहे हैं, कैन यू क्लैरिफाई दैट, इज इट हराम टू हंट इन हराम और इन एहराम, बोथ एहराम में इट इज हराम टू हंट एंड हरम में इट इज हराम टू, ठीक है। ये पहली क्लास के अंदर हमने वेरीफाई भी कर लिया था और आपने से किसी ने फतवा भी ला, मतलब वो शरीफ हुक्म भी हमें याद दिला दिया था कि एज लॉन्ग एज यू आर इन हरम, बाउंड्रीज ऑफ हरम, वेदर यू आर इन एहराम और यू आर नॉट इन एहराम, इट इज नॉट, ठीक है। अच्छा, इन इन हालत एहराम, अब इसमें शायद उस क्लास में बात हुई थी कि नहीं हुई थी कि भाई हालत एहराम जो है ना ये तो मीकात के अंदर होती है ना, ठीक है ना, मीकात विच इज अ लार्जर बाउंड, ठीक है। तो वो पूरा मीकात जो है वो हरम के थोड़ी है, हरम के बाहर का जो एरिया है, लेकिन वो मीकात के अंदर का एरिया है, तो उस एरिया में क्या है, अगर आप हालत एहराम में नहीं है तो फिर भाई यानी वही बात है, फिर मुझे याद नहीं है कि वो उस हालत में फिर आप शिकार कर सकते हैं ना, क्योंकि आप हरम के अंदर नहीं है और आप एहराम के अंदर भी नहीं है, लेकिन आप मीकात के अंदर तो हैं, लेकिन मीकात के अंदर हैं लेकिन हरम के अंदर नहीं है, लेकिन एहराम के अंदर है, ठीक है। तो चूंकि एहराम के अंदर हैं, अगरचे के हरम के अंदर नहीं है, फिर भी आप शिकार नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एहराम की वजह से, ठीक है ना। चले, वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।